أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم نے پڑھنا ہے پیج نمبر 22 سے. یہ ہم نے تقریباً ڈیڑھ چیپٹر اس کا پڑھا, ٹھیک ہے جی. اور اس میں جو ضروری باتیں آپ نے اب تک پڑھی ان کی سمری کچھ یہ ہے کہ آپ نے پہلا جو ہم نے لیکچر پڑھا اور اس کے بعد اس میں جو باتیں بتائی گئیں کہ علم حصولی کیا ہے اور علم حضوری کیا ہے اور یہ خواب کے حواس کیا ہیں اور بیداری کے حواس کیا ہیں, تو اس کے بعد روح کے ورکنگ کے تین درجے حضور مرشد کریم نے بیان کیے. یہ جو لیکچر نمبر 2 ہے, میں نے جیسا شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایک لیکچر کئی کئی لیکچرز کا مجموعہ ہے, اس کو یہاں کافی سمرائز کر کے حضور نے لکھا ہے. تو اس لیکچر یعنی دوسرے لیکچر میں یہ لیکچر نمبر 2 یا چیپٹر نمبر 2 جو ہے اس کا, جس کا عنوان ہے ثابتہ آیان اور جویہ, جس کا آگے ہم پڑھنے لگے ہیں, تو اس میں تجلی نور اور روشنی کہا گیا اور بتایا گیا کہ انہی تین چیزوں کے تین نام جو ہیں وہ ثابتہ آیان اور جویہ ہیں. پھر انہی تین چیزوں کے نام بتائے کہ روح اعظم, روح انسانی اور روح حیوانی ہیں, اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو روح اعظم ہے یہ اصل میں علم کو کہا گیا ہے, اور آیان یا نور جو ہے یہ فکر کو کہا گیا ہے, اور روشنی جو ہے یہ عمل کو یا ہمارے احساسات کا درجہ آ گیا. یہ اس کا انتہائی مختصر سا خلاصہ ہے کہ یہ تین درجے ہیں, علم کے, فکر کے اور عمل کے. تو فکر کسے کہتے ہیں؟ سوچوں کو. ہماری سوچیں جو ہیں انہیں کو تو فکر کہتے ہیں. سوچیں ہوتی کیا ہیں؟ اللہ کے علم کا عکس پڑتا ہے ذہنوں پہ, تو انسان کے ذہن میں سوچیں پیدا ہوتی ہیں. ان سوچوں کے بارے میں پھر آگے جب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, مختلف فیصلے کرتا ہے, تو اس کو ذہن کہتے ہیں, اور وہ جو فیصلہ کرنے والی حرکتیں ہیں وہ ساری کی ساری ذہن کہلاتی ہیں. اور آپ کو حیران کر دینے والا انکشاف کر دیتا ہوں, اسی ذہن کا ایک نام نسمہ ہے. وہ ہم اس کو فردر جوں جوں آگے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ساری ڈیٹیلز آپ کو حضور مرشد کریم کے اپنے الفاظ میں ملتی رہیں گی. تو یہ صفحہ نمبر 22 پہ ہم شروع کرنے لگے ہیں کہ رویا کی صلاحیتیں, لیکن اس سے ذرا سا پہلے اوپر دیکھیں کہ کیا فرمایا کہ تجسس جو ہے وہ کیا ہے. یہی وہ تجسس ہے, یعنی جن چیزوں سے ہمیں واقفیت نہیں ہے ان چیزوں سے واقفیت پیدا کرنے کا ہمارے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے, ایک جستجو ہوتی ہے, تو اس کا تجسس ہمارے اندر موجود ہے. اور یہی وہ تجسس ہے جو مادی اور روحانی صلاحیتوں کو ہمارے اوپر منکشف کرتا ہے, دونوں قسم کی صلاحیتوں کو, مادی اور روحانی. اور تجسس کی اس روح شناسی سے, یعنی کہ ہم اپنے تجسس سے جب واقف ہو جاتے ہیں, تجسس کی اس روح شناسی سے, ٹھیک ہے, ہم جس حد تک واقف ہو جاتے ہیں. اب اس کا دوسرا مفہوم یہ کہ ہم خود اپنے تجسس کو جان لیں, یا تجسس کی وجہ سے ہم جو کچھ جانتے ہیں اس سے جس حد تک واقف ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں, پھر اسی مناسبت سے ہمارے اندر صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں نا, سب جانتے ہیں ہمارے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں, ہم ان کا استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کیسے کروں, تو یہ اس میں دیکھیں یہ راز صاف لکھا ہوا ہے کہ تجسس جو ہے وہ بنیاد ہے. ایک دفعہ حضور مرشد کریم نے فرمایا کہ بھئی باہر کی دنیا میں بچے وٹ از دس وٹ از دیٹ وٹ از دس وٹ از دیٹ کرتے کرتے سب کچھ سیکھ جاتے ہیں, और एक हमारे यहाँ कोई बच्चा तीसरी बार सवाल पूछे तो अगले को डांट पड़ जाती है। तो ये हमने बच्चों के तजस्सुस को, उनकी क्यूरियोसिटी को, उनकी इंक्विजिटिवनेस को बेतहाशा कर्ब किया हुआ है, दबाया हुआ है। नतीजा हमारे अपने भी वो तजस्सुस दबा हुआ है। लिहाजा जहाँ कहीं किसी बंदे में तजस्सुस जागता भी है, अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं सोचना, ये नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि आप तजस्सुस को इस्तेमाल किए बगैर। साफ तो लिखा है कि तजस्सुस की इस रूह शनासी से, दो चीज़ें हैं इसमें, एक आपको खुद अपने तजस्सुस से रूह शनास होना है, और दूसरे वो तजस्सुस की वजह से जितना ज़्यादा चीज़ों को या किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा गहराई तक आप पहुँच सकेंगे, उसी मुनासबत से हमारे अंदर सलाहियतें बेदार हो जाती हैं। और देखें अगला जुमला, मादी जोन में क्या है कि हम नई नई चीज़ें इख्तरा करने पर कुदरत हासिल कर लेते हैं, और रूहानी तर्जों में जब ये तजस्सुस मादी तर्जों में काम करता है तो हमारे अंदर इजादात की, इख्तरा करने की, इम्प्रोवाइज करने की सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। और जब ये रूहानी तर्जों में तजस्सुस काम करता है तो जहन में इतनी वसत पैदा हो जाती है, यानी ये सलाहियतें इतनी फैल जाती हैं कि कायनात एक आईने की तरह हमारे सामने आ जाती है, और हम इस बात से वाकिफ हो जाते हैं कि कायनात में पहले क्या था, अब क्या है और आइंदा क्या होगा, यानी अजल से अबद की तरफ का सफर शुरू हो जाता है। दरअसल तजस्सुस ही एक ऐसी हरकत है जिसके जरिए कोई इंसान उलूम में तरक्की करके महारत हासिल कर सकता है। उलूम में तरक्की और फिर इलम में महारत, ये दो चीज़ें, इन दोनों चीज़ों में आपको अपने तजस्सुस को बरुए कार लाना है। ये था खलासा जो अब तक हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं, उन्वान है रोया की सलाहियतें, यानी ख्वाब में जो इंसान काम करता है उसकी सलाहियतें। रोया में, रोया कहते हैं ख्वाब को, रोयत कहते हैं जो चीज सामने हो। फरमाते हैं कि पिछले लेक्चर्स में इस बात की वजाहत की गई है कि इंसान के अंदर जिंदगी से मुताल्लिक, हाँ वो जिंदगी जमान और मकान में पाबंद जिंदगी हो या टाइम एंड स्पेस से आज़ाद जिंदगी हो, ख्यालात के ऊपर कायम है, और हर ख्याल इल्म की हैसियत रखता है। अब इस बात को समझने के लिए फिल्म की मिसाल फरमाई है उन्होंने। अब ज़रा फिल्म की मिसाल को पे तवज्जो दीजिएगा। प्रोजेक्टर है, उससे लहरें चलती हैं, और वो लहरें चलती हुई महसूस भी होती हैं और नज़र भी आती हैं, लेकिन उन लहरों के बारे में हमारे जहन में कोई मानी नहीं पैदा होते। सिनेमा में बैठे हुए हम ये देख रहे हैं कि पुष्ट की जानिब से रोशनियों, लहरों या शोओं की एक धार चली आ रही है, एक बीम आ रही है, और ये लहरें या शोएं पर्दे पर जाकर टकरा रही हैं। अब मैं अगर ये कहूं कि देखें यहां पे एक और कानून आ गया, यानी एक बात है कि जब तक ये लहरें या शोएं किसी पर्दे से नहीं टकराती, कोई चीज सामने नहीं आती। जब ये लहरें ये शोएं पर्दे पर जाकर टकराती हैं तो वहां हमें मुख्तलिफ सूरतें, मुख्तलिफ शक्लें और मुख्तलिफ रंग नजर आते हैं। हम इन लहरों को ख्याल से तशबी दे सकते हैं। ये है ख्याल की बात। ख्याल क्या है? इत्तला, इत्तलात का एक बीम चल रही है। वो जब जहन उनमें मीनिंग पहनाना सीख लेता है, उनको तसव्वुर बनाता है, फिर उनसे फिर वो एहसास बनता है, तो वो फिर चीजें काले में यानी स्क्रीन पे डिस्प्ले होती हैं। तो इस मिसाल से, सॉरी, हम इन लहरों को ख्याल से तशबीह दे सकते हैं, लहरों के टकराने के अमल को इल्म से मंसूब कर सकते हैं, यानी लहरें और फिर ये उनका टकराना, यहां तक ये सब इल्म ही की सूरतें हैं, ये सब इल्म के दर्जे। पर्दे या स्क्रीन से लहरों के टकराने के बाद जो सूरतें हैं और जो रंग जलवागर होते हैं, उन्हें हम मानी और मफहूम कह सकते हैं। तो इस मिसाल से इल्म में ये इजाफा होता है, यानी हमारे जान में, जानकारी में, जानने में, सूझबूझ में ये इजाफा होता है कि ख्याल जब तक किसी स्क्रीन से, स्क्रीन पर टकरा कर अपना मुजाहरा ना करे, उस वक्त तक ख्याल इल्म और मानी का जामा नहीं पहनता। गोया ख्याल को, इसीलिए कहते हैं ना हवाई किले बनाना, ये शेष चिल्ली बने रहना, तो हम अपने जहन में जो कुछ सोचते रहें वो काफी नहीं है। जब तक कोई इल्म मानी का जामा पहनकर किसी जगह डिस्प्ले ना हो, तो मिसाल देखें प्रोजेक्टर से लहरें और फिर वो उनका खिला में से गुजरकर एक स्क्रीन पे टकराना, और हजूर मुर्शिद करीम ने देखे कितनी बारीकी से, कितनी वजाहत, वजाहत और बारीकी और गहराई तीनों चीजें हैं इसमें, कि लहरों तक का अमल जो है ये सब इल्म से मंसूब कर सकते हैं, और पर्दे या स्क्रीन से लहरों के टकराने के बाद जो सूरतें और जो रंग जलवागर होते हैं, उन्हें मानी और मफहूम कह सकते हैं। ख्याल को मजहर बनने के लिए तीन दायरों में सफर करना पड़ता है। इन तीन दायरों के नाम साबिता, आयान और जवैया है। साबिता का इस्तलाही नाम रूहे आजम, आयान का इस्तलाही नाम रूहे इंसानी, और जवैया का इस्तलाही नाम रूहे हैवानी है। और कोई इल्म इन तीन दायरों से गुजरे बगैर इल्म नहीं बनता। जब सालक इन तीन दायरों के अंदर दाखिल हो जाता है, तो उसके अंदर रूह की सलाहियतें बेदार हो जाती हैं, और जिस जिस मुनासिबत से ये सलाहियतें बेदार होती हैं, उसी मुनासिबत से वुसत बढ़ती जाती है, अंदर की आंख जो कुछ देखती है और जिस जिस मुकाम पर सफर करती है, हजूर कलंदर बाब औलिया ने उसको छह हिस्सों में तकसीम किया है। यहां पे फिलहाल इन छह हिस्सों का तस्करा नहीं किया जा रहा, ठीक है, सिर्फ पहले हिस्से की बात आएगी। मैं आपसे दो लफ्ज इसमें वजाहत करने की इजाजत चाहूंगा। एक है ये सालिक, ये बड़ा कंफ्यूजिंग लफ्ज है। हम सालिक पता नहीं किसको कहते हैं, राह सलूक क्या है, देखें ये बड़ा एक टेक्निकल वो बना हुआ है सिस्टम। बहुत आसान लफ्जों में सलूक का उर्दू में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा सलूक कर रहा हूं और तुम आगे से बदतमीजी कर रहे हो, हम बोलते हैं ना ये जुमले। तो सलूक का क्या मतलब हुआ? सलूक का मतलब हो गया रवैया, सलूक का मतलब हो गया हमारा बिहेवियर, हमारा बर्ताव, हमारा चलन। तो सालिक क्या कर रहा है? वो रवैये सीख रहा है कि कैसे हमें अपने रवैयों को दुरुस्त करना है, कैसे हमारी अप्रोच ठीक होनी चाहिए। तो ये लफ्ज सालिक, यानी अपने रवैयों को दुरुस्त करेंगे तब आप इन तीन दायरों के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब ये तीन दायरे क्या हैं? आपने नाम तो पढ़ लिए, नाम तो मुताले में आ गए कि तीन दायरे क्या हैं, कि रूहे हैवानी हैं। अब ये रूहे हैवानी क्या है? असल में ये तीनों दायरे एक साथ काम करते हैं, लेकिन हम इन तीन दायरों से कितना वाकिफ हैं? तो रूह हैवानी की इंतहाई मुख्तसर डेफिनेशन ये कि वो काम जो जानवर कर रहे हैं, हैवानात कर रहे हैं, अगर हम भी वही कर रहे हैं तो हम रूह हैवानी की सतह पे। अब जरा गौर कीजिए, हैवान क्या करता है? खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, हगता है, मूतता है, बहुत होता है तो कुछ जानवर हैं जो घोंसले बना लेते हैं या घर बना लेते हैं, बाकी वो अपना क्या कहते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, अच्छा गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, उनकी बच्चों की परवरिश भी करते हैं। तो ये सब रूह हैवानी के दर्जे के काम है। अब रूह इंसानी क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन भी जहन में अगर आप बिठा लें तो रूह इंसानी के दर्जे पे इंसान वो करता है जो हैवान नहीं करते। अब हैवान क्या नहीं करते? हैवान हथियार नहीं बनाते, औजार नहीं बनाते, यानी इजादात नहीं करते, यानी इख्तराअत नहीं करते। देखे ना, आलात और औजार क्या हैं, ये हथियार क्या हैं, इजाद है, इख्तरा है, आपने एक चीज को अपने फहम के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक, अपने काम को आसान करने के लिए उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर दी। तो ये इंसानी दर्जे पे आ गई। अब ये टीवी देखना, तो किताब पढ़ना, किताब लिखना, ये सब रूह इंसानी के दायरे के काम है। अब टीवी पे एक्टिंग करना, क्योंकि ये जानवर नहीं करते, कैमरा बनाना, तो फिल्म शूट करना, तो ये खाने की तरकीबें नशर करना, और ये सारा जितना भी निज़ाम है, अब ये टीवी बनाना, तो मोबाइल बनाना, तो ये ऐप्स बनाना, तो ये देखे ना कैसे इजादात और इख्तराअत, पहले लोग चल के जाते थे किसी के पास, अब वो घर बैठे ही एक उसकी बात सुन रहे होते हैं। तो ये सब इजादात और इख्तराअत है। अब आ जाए रूह आजम के दर्जे पे, तो रूह आजम के दर्जे पे इंसान वो करता है जो इंसान नहीं करता। अब इंसान क्या नहीं करता? इंसान वसाइल के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। इंसान देखे ना, कोई ईजाद करता है तो अल्लाह की किसी न किसी तखलीक में तसरफ करता है। मसलन ये लाइट, आपने बल्ब बनाया, तो बल्ब क्या है? करंट। करंट अल्लाह की तखलीक है, बरकी रॉ है, उसको आपने हार्नेस कर लिया, उसको आपने काबू कर लिया, उसको एक तारों के जरिए निजाम बना के आपने उसे बल्ब तक पहुंचाया और बल्ब रोशन हो गया। तो ये आपने वसाइल का इस्तेमाल करके एक चीज इजाद की। अब रूह आजम के दर्जे पे क्या है कि इंसान वसाइल का मोहताज नहीं रहता, वो बराह रास्त वही कर रहा होता है जो अल्लाह करवा रहा होता है उसे। ये है दर्जा। अब ये एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने इसलिए दी ताकि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स मजीद वाजे हो जाएं कि हम बयक वक्त एक रूहानी इंसान भी हैं और इंसान भी हैं और एक आदमी भी हैं। यही मुर्शिद करीम ने अपने सालाना खुतबात में कई बार बात फरमाई कि आदमी से ऊपर उठो और इंसान बनो। आदमी मट्टी के जिस्म को भी कहते हैं, क्योंकि आदम मट्टी का बना हुआ। तो इसी तरह इंसान से मुराद है। अब इसकी तीसरी डेफिनेशन ये है कि रूहे हैवानी जो है ये जिस्मानी सतह का निजाम है, रूहे इंसानी जहनी सतह का निजाम है, और रूहे आजम ये है रूहानी सतह का। अब यहां माशाल्लाह हमारी फहम अगर काम कर जाए, और अल्लाह करे कि हम हैवानी सतह से ऊपर उठ के साथ साथ इंसानी सतह को पे आ जाए, और फिर वहां से आगे का सफर कर सके। तो अब ये जो बातें, वो जो छह दायरे जिसका जिक्र हजूर कलंदर बाबा वाली ने, सॉरी छह हिस्से, क्या अंदर की आंख जो कुछ देखती है, जिस जिस मुकाम पर सफर करती है, हजूर कलंदर बाबा वाली ने उसको छह हिस्सों में तकसीम किया। वो छह हिस्से क्या है? पहला हिस्सा कशफुल जू कहलाता है। कशफुल जू, मजे की बात आपको बता देता हूं, कश कहते हैं जानने को, कश कहते हैं किसी चीज से वाकिफ होने को। जब कोई चीज आपके इल्म में आ जाती है तो वो कश कहलाता है। लेकिन जू कहते हैं बहती हुई नदी को, आबे जू पानी की नदी। तो कशफुल जू यानी ये जो लहरों का एक बहाव है, जब आप इसको जानना शुरू करते हैं, ये पहला हिस्सा है, इसे कशफुल जू कहते हैं। और कशफुल जू ऐसी सलाहियत है जब बेदार हो जाती है तो सालिक को इस बात का शऊर हासिल हो जाता है कि मुझे अल्लाह ताला की निस्बत हासिल है। और अल्लाह ताला के साथ निस्बत हासिल होना निस्बत वाहदत कहलाता है। हजूर कलंदर बाबौलिया ने बताया कि जब आप अपने इनर सेल्फ में दाखिल हो जाते हैं तो ये वाहदत है, जब बाहर देख रहे हैं तो ये कसरत है। तो ये जब आप अपने अंदर के निजाम को जानना शुरू करते हैं तो गोया आप वाहदानियत की तरफ चल पड़े, वाहदत की तरफ चल पड़े। हजूर मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि निस्बत के मानी ये है कि सालक को एक मखसूस तर्ज फिक्र हासिल हो जाए। निस्बत क्या है? एक खास तर्ज फिक्र का नाम है निस्बत। अब हम अजीमी हैं तो हमें अपने पीर मुर्शिद की जो निस्बत हासिल है तो हमें उनकी एक टिपिकल, मखसूस से मुराद है टिपिकल एक तर्ज फिक्र है, अगर वो हमें हासिल हो गई तो हम उनके इतबा का हक अदा कर रहे हैं, और अगर नहीं हासिल हुई तो कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि निस्बत का मानी ही ये है कि सालिक को जो अपने रवैये ठीक करने निकला है उसको एक मखसूस तर्ज फिक्र हासिल हो जाए। मसलन बंदा ये जान ले, समझ ले और उसके जहन में ये बात रासख हो जाए, पहली बात क्या कि मैं मखलूक हूं, और दूसरी बात मैं मखलूक तो हूं लेकिन मेरा खालिक अल्लाह है, ये दूसरी बात। और आगे फरमाया यानी ये निस्बत वहदत हासिल हो तो पहली चीज बंदे के जहन में ये रासख होना शुरू हो जाती है कि मैं मखलूक हूं और मेरा खालिक अल्लाह है, ये है निस्बत वहदत। कितना इख्तसार से, कितना बड़ा चैप्टर उन्होंने एक जुमले में समो दिया कि अगर किसी बंदे को, किसी सालक को ये एहसास अंदर रासख हो जाए कि मैं मखलूक हूं और मेरा खालिक अल्लाह है, तो उसको निस्बत वहदत हासिल हो गई। फिर फरमाया कि निस्बतों की बहुत सी किस्में हैं, उलमाए बातें ने 18 निस्बतों का तस्करा किया है। ये जो 6 दर्जे हैं इनके आगे 3 जरब 3 किया हुआ है। अब निस्बत इश्क, निस्बत सुकैना, निस्बत मुतमाइना, और इसमें एक निस्बत जज्ब वो भी है, निस्बत याददाश्त भी है, ये आगे आएंगे ठीक है, वगैरह वगैरह। इस वक्त हमारे पेशे नजर निस्बत वहदत है, यानी फिलहाल ये निस्बतों का तस्करा करके जब इंसान को इस बात का यकीन हासिल हो जाता है कि मैं अल्लाह ताला की जात से वाबस्ता हूं और उसकी जात के अलावा कोई दूसरी कोई जात खालिक नहीं है, तो उसके जहन में पूरी कायनात का एक तसव्वुर उभरता है। बल्फाज़े दीगर निस्बत वहदत के तहत खालिक कायनात और तख्लीक का निजाम उसके जहन में मुनक्कस होने लगता है। लेकिन खुद को आप मखलूक मानेंगे, अल्लाह को खालिक मानेंगे तो क्या होगा, पूरा तख्लीकी निजाम आपके जहन पर मुनकशिफ होने लगेगा। ये इतना बड़ा राज है। और जब कायनात का इज्तमाई निजाम, कायनात का इज्तमाई निजाम जहन के ऊपर मुनक्कस होता है तो तफक्कुर इस तरफ रहनुमाई करता है, फिर सोचें काम करने लगती हैं, उसको तफक्कुर कहते हैं। तो तफक्कुर इस तरफ रहनुमाई करता है कि कोई बिसात है जहां पूरी मखलूकात मौजूद हैं और तखलीके कायनात का पूरा प्रोग्राम नक्श है। जहां ये तखलीके कायनात का पूरा प्रोग्राम है उसी को लोहे महफूज कहते हैं। उसके बाद ये بات علم میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے, اور یہی وہ یقین ہے جس کی بنا پر انسان چاند ستاروں اور اپنی زمین سے الگ ماحول اور زمین کے اوپر موجود دوسری مخلوقات سے متعارف ہوتا ہے. جب ہم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں بے شمار ستارے نظر آتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ستارے نظر آتے ہیں بلکہ ہمارے حواس ستاروں کی روشنی کو, ان کی ٹھنڈک کو اور ان کی چمک کو اور اس ماحول کو جس میں وہ ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں محسوس کر لیتے ہیں. جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے لاشعور میں آ جاتی ہے کہ ستارے کہیں قائم ہیں اور کسی بساط پر مخصوص نظام کے تحت گردش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی نگاہ اپنے ماحول کے باہر کی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے, اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کام کرنے والی حس ان چیزوں کے تاثرات کو محسوس کرتی ہے. یعنی نگاہ ماحول سے باہر کی چیزوں کو بھی دیکھ سکتی ہے, چاہے آپ آنکھ کھول کے دیکھیں یا آنکھ بند کر کے دیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہماری حسیات اگر کام کریں تو ان چیزوں کے اثرات تاثرات یعنی اثرات کو محسوس کرنے لگیں, ہمیں پتہ چلنے لگتا ہے کہ یہ کیا اثر کریٹ کر رہا ہے. مثلا جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ چاند کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے. جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ سورج کی تپش کو محسوس کرتا ہے. چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی کو دیکھنا یہ ہے آنکھ کا دیکھنا, اور چاند اور سورج کے تاثرات کو قبول کرنا یہ ہے حس کا پہچاننا. اب دیکھا نا, دونوں چیزیں واضح ہو گئیں کہ دیکھنا اور پھر دیگر حسیات کے ساتھ اس کے اثرات کو سمجھنا یا جاننا یا قبول کرنا. چاند سورج کیا ہیں اس بارے میں ہمیں صرف اتنا علم ہے کہ یہ چاند ہے اور یہ سورج ہے. یعنی ایسی کوئی یقینی بات ہمارے علم میں نہیں ہے کہ سورج کو روشنی کہاں سے ملتی ہے اور چاند کی روشنی کا منبع اور مخزن کیا ہے, یعنی ان کا سورس آف لائٹ کیا ہے. اب اس بارے میں سائنس کی کئی تھیوریز ہیں, ان سے آپ کو اگنور کرنا ہے, ان کو آپ مت انٹرٹین کریں. یہاں پہ بات سنیں مرشد کریم کی کہ وہ کیا بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ اس بات کو آسان الفاظ میں اس طرح کہیں گے کہ انسان کی نگاہ تمام اجرام سماوی کو دیکھتی ہے اور زمین کے اوپر مختلف نوع اور مختلف مخلوقات کو بھی دیکھتی ہے, اور انسانی آنکھ جو نگاہ کا تصور دے رہی ہے وہ کائنات کو دیکھتی ہے. اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کائنات کہاں ہے, آنکھیں بھی کھلی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ کائنات کہاں ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ کائنات کا دیکھنا دو طرزوں پر ہے, ایک کائنات کو صرف دیکھنا جیسے آپ اور میں دیکھتے ہیں, دوسری طرز یہ کہ کائنات کی ماہیت سے واقف ہونا. یہ ماہیت کیا ہے؟ ما جو ہے اس کی ساخت, اس کی بناوٹ, تو ماہیت کیا ہوا؟ کائنات کی ماہیت سے واقف ہونا. یاد رکھیں یہ صرف جاننے سے آگے کا درجہ ہے وقوف, یعنی رکنا, رک کے اس کو بہت زیادہ مانوس ہو کے اس سے واقف ہو جانا. یعنی کائنات کو دیکھنے کی دو طرزیں فرمائیں, ایک یہ کہ صرف دیکھنا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, जैसे जानवर देखते हैं हम भी देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तर्ज ये है कि कायनात की माहियत यानी जो जैसे वो बनी हुई है उसकी बनावट जो कुछ है हम उससे वाकिफ हो जाएं, और ये मालूम करना कि कायनात किन फार्मूलों से मुरक्कब है, और कायनात को देखना या मजाहिर को देखना ये सब शौरी दायरा कार में आता है। यानी शौरी दायरा कार में रहते हुए पहले तो वो वकूफ हासिल करना है, उसके बाद फिर आपको लाशौरी वकूफ हासिल करना है। तो कायनात के बातिन को देखना यानी कायनात के इन फार्मूलों पर कायम है लाशौर में देखना है, और इंसान का लाशौर इस बात को अच्छी तरह जानता है कि कायनात के हर जर्रे की शक्ल सूरत हरकत और बातनी हिस्सियात क्या हैं। कायनात के हर जर्रे के बारे में इंसान का लाशौर जानता है, और ये इल्म शऊर में इसलिए नहीं आता कि इंसानी शऊर को अपने लाशऊर का मुतालिया करना नहीं आता। अगर हमारे अंदर लाशऊर को मुतालिया करने की सलाहियत पैदा हो जाए तो फिर कायनात के हर जर्रे की शक्ल सूरत हरकत और बातनी हिस्सियात का मुतालिया करना आसान हो जाएगा। और मुतालिया कहते हैं कोई चीज जहन में तुलू हो, कायनात की बातनी हिस्सियात को मुतालिया करने की सलाहियतों में पहली सलाहियत का नाम कशफुल जू है। मेरा ख्याल है यहां आज रुक जाते हैं, ठीक है जी।